नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोलकाता में अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार समिति के लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल तथा आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से लागू जीएसटी ढांचे के पुनर्गठन से पहले राज्यों के सुझावों पर गहन चर्चा की गई थी। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि केवल 8 महीनों में ये सुधार लागू किए गए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। नई दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। परामर्श के अनुसार विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। मंत्रालय ने परामर्श में जीएसटी संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के अगले वर्ष मार्च तक या फिर पुराना स्टॉक खत्म होने तक उपयोग की अनुमति दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। श्री वैष्णव इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों से भी परामर्श किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मंत्रालय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तथा सीखने की प्रक्रिया को अधिक आनंददायक और छात्र केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय देश के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास परियोजनाओं और कार्यों के लिए 14,85,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ रुपए मिले थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति करना है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
भारत अमेरिका के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने अमेरिका के खाद्य और कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाह दीव में वनकबरा, पुदुचेरी में कराईकल और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह पर 3,69,80,00,000 रुपये निवेश किए जाएंगे। देशभर के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की गुफाएं, नागाहिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश का एर्रामट्टे डिब्बालू, तिरुमाला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टाने शामिल हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने मॉनसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूरी छानबीन और सभी पहलुओं की जांच तथा चारधाम यात्रा अधिक सुरक्षित बनाने की रणनीतिक पहल लागू करने के बाद ये मंजूरी दी गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने महानिदेशालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई बार बैठक की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत आज अपना ग्रुप ए का अंतिम मुकाबला ओमान के साथ खेलेगा। अबुधाबी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।